हाँ
सबको
नमस्ते। हम योग के सीरीज में डिस्कस कर रहे थे योग, जो आजकल हम अलग अलग तरह के योग या पाथ्स जानते हैं। कहीं कोई ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, कर्म योग, और बहुत कम लोग जानते हैं जो हठ योग। तो इनके बारे में थोड़ा सा हमारे ज्ञान हो, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने ये जाना योग क्या होता है, तो इट्स ए वैदिक डिसिप्लिन विच ट्रेन्स आवर माइंड एंड सेंसेस फॉर ट्रैंक्विलिटी एंड स्पिरिचुअल इनसाइट। तो जो भी कोई व्यक्ति प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू गुजरे तो वो उसको रियलाइज कर सकता है, वो ट्रैंक्विलिटी को और वो स्पिरिचुअल इनसाइट को। उसके लिए करना क्या होता है, माइंड और सेंसेस को रिफाइन करना होता है और एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाना होता है। इसी को योग कहते हैं। क्योंकि हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें मेनली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तो योग उन तीनों कंपोनेंट्स के साथ डील करता है। एक तो होता है हमारा आत्मा, दूसरी माइंड, माइंड में आपकी विजडम, इंटेलेक्ट, विल सब कुछ आ जाता है, थॉट प्रोसेस, और तीसरा है जो फिजिक है, जो बॉडी है। ये तीनों को कैसे इनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन बनाया जाए, इनको रिफाइन किया जाए, जिसके द्वारा कि व्यक्ति इस जीवन में भी और मरने के बाद भी जो सुख है, जो जॉय है, लाइफ को एंजॉय कर सके। एंजॉय तभी करता है जब अंदर ट्रैंक्विलिटी होती है, शांति होती है, कामनेस होता है, और मरने के बाद भी उस परम आनंद को, परमानंद जो सुप्रीम ब्लिस है, उसको वो पा सके। तो ये बेसिकली योग का उद्देश्य है। जो डिफरेंट पाथ्स हमें दिखते हैं या होते हैं वो क्यों है, क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परामेंट है वो सबका अलग अलग है, सबकी जो इंक्लिनेशन है वो अलग अलग है। तीन चीजों पर आदमी काम करता है, तीन चीज के बेस पर। पहली चीज होती है उसकी माइंड, और माइंड से रिलेटेड उसकी विल और एक्शंस, जिसके बेस पर वो काम करता है। दूसरी चीज होती है उसकी इंटेलेक्ट, जो कि वो रैशनलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, विजडम। और तीसरी चीज होती है इमोशन, जिसमें लव, हेट सब कुछ होता है, पर यहां योग के माध्यम से लव। तो हर ह्यूमन बीइंग में ये तीन चीजें होती हैं, एक्शन जिसका रूट है माइंड, रैशनलिटी जिसकी रूट में विजडम है, और लव या अफेक्शन जिसके रूट में इमोशन है। तो जिस व्यक्ति में जो चीज डोमिनेटिंग नेचर में आ जाता है, मान लीजिए कोई बाय नेचर बड़ा इमोशनल है, तो वो कुछ भी करता है उसकी लॉजिक और उसकी जो विल पावर है वो होते हैं, पर सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी रूप में उसका इमोशन काम करता है। तो उस तरह की स्पिरिचुअल पाथ वो व्यक्ति जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, नेचुरली वहां इमोशंस ज्यादा दिखते हैं, लव और अफेक्शन ज्यादा दिखते हैं उसी को। वो एक दूसरी टाइप का पाथ है, उसको हम कहते हैं भक्ति मार्ग। जिस व्यक्ति में डायनामिज्म बहुत है, बॉडी और माइंड बहुत एक्टिव रहना चाहता है, जो बहुत स्थिर शांत रहने वाले लोगों को खराब सोचता है, वो जो निठल्ले हैं, आलसी हैं, खुद को 24 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे बिजी रखता है, उसकी नेचर में है कुछ करना, कुछ धरना, कुछ सोचना, मतलब एक्टिव रहना। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सुपर एक्टिव नेचर का व्यक्ति हो, उसको आप कहेंगे एक घंटे बैठ के मन शांत करके मेडिटेशन करो, होगा ही नहीं। तो वो जब भी कोई स्पिरिचुअल पाथ अपनाएगा, वो अपनी उस एटीट्यूड के साथ जाएगा, तो तो उसको उसको जो वो काम करता है उस काम का जो स्पिरिचुअलाइजेशन है उसी का नाम है कर्म मार्ग या कर्मयोग। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड है, जरूरी नहीं कि उसका आईक्यू अच्छा हो, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इंटेलेक्चुअली सोचता होगा। और हमने ऐसे भी बड़े बड़े आईक्यू हाई वाले लोगों को देखा है जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप में से भी बहुत होंगे, जो डे टू डे लाइफ में प्रोफेशन में तो वो इंटेलेक्ट को खूब यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में वो वन ऑफ द मोस्ट सुपरस्टिशियस पर्सन होते हैं। इसका मतलब है कि वो प्रोफेशन, उनका आईक्यू तो अच्छा है पर जो उनकी जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इमोशंस ज्यादा है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, वो मूर्ख है पढ़ा लिखा है उसकी बात नहीं, जिसकी नेचर में रैशनलिटी है। तो आपके छोटा एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आएगा, कहीं आप गलत फहमी में ना बैठे कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम ही इंटेलेक्चुअल हैं। तो एक बार सच घटना है, जब ये गणेश साहब दूध पी रहे थे, गणेश जी पूरे अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर भारत तक सब दौड़े दौड़े दूध पिला रहे थे, और उस दिन की इंसिडेंट है। तो बड़ौदा यूनिवर्सिटीज के कैंपस में तो प्रोफेसर्स कॉलोनी में एक हिंदी के प्रोफेसर थे, ये उनकी आप बीती है जी, जो उन्होंने पेपर में कहीं लिखा था। तो उन्होंने लिखा कि हमारे कॉलोनी में भी सब भाग रहे थे दूध पिलाने के लिए, तो उनके एक मित्र हैं, वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, तो वो गेट से अंदर आए, बड़े खुश थे। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज का दिन बन गया क्या? ना, बड़े मुश्किल से 3 घंटे के बाद नंबर पड़ा और मैं दूध पिलाकर ही आया। अच्छा भाई, अच्छी बात है। तो वो वहां एक वो काम करने वाली बाई थी जो झाड़ू पोछा करती है ना घर में, मेड। तो वो प्रोफेसर ने पूछा वो बाई को, तुम नहीं गई गणेश को दूध पिलाने? बाई ने जवाब दिया, क्या साहब, पत्थर कोई दूध पीता है? सब बकवास है। हिंदी के प्रोफेसर ने बोला, काश तुम किसी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर होते, इस देश का कल्याण हो जाता। जब फिजिक्स का प्रोफेसर को यह अकल नहीं है पत्थर में दूध या पानी नहीं जाता, पर वो फिजिक्स का प्रोफेसर होकर पैसा कमाता है, और तुम बाईगिरी करते हो, तुझे समझ में आता है पत्थर दूध नहीं पीता है। वो बाईगिरी करती है पर इसकी रैशनलिटी काफी हाई है, इसलिए इंटेलेक्ट के कारण पैसा कमाता है, पर नॉर्मल लाइफ में इसका इमोशन बहुत हाई है। दैट्स द डिफरेंट। सो पढ़े लिखे होने का कभी ये मिस इंटरप्रेट मत करिए कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं। इंटेलेक्ट तो आपकी डे टू डे लाइफ में दिखना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप में, आप दुनिया को कैसे देखते हो, समझते हो, कैसे डील करते हो, उससे पता लगता है। तो जो लोग रैशनलिटी की सोच वाले होते हैं उनके लिए हर चीज को ट्रूली समझना, उसकी फैक्ट को समझना, जब तक नहीं समझे तब तक उनको नहीं होता है। अगर ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ पर जाए वो अपने विजडम को ज्यादा यूज करना पसंद करता है। तो वो एक दूसरा मार्ग है, उसको आप हम ज्ञान मार्ग कहते हैं। इसी तरह क्योंकि व्यक्ति के नेचर में ये अलग अलग एटीट्यूड्स है, इंक्लिनेशन है, उसके डीएनए में, उसके नेचर में ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं, तो जब भी कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ अपनाएगा वो एक ही टाइप का हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ तो अलग अलग वर्जन्स दिखेंगे। इसी के कारण अलग अलग तरह के योग दिखाई देते हैं। पर एक चीज जो कॉमन है कि आप किसी भी मार्ग पर जाते हैं, भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, और भी जो हठ योग और राजयोग जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इन सब में जो एक चीज जानने लायक है, क्योंकि सोसाइटी में काफी मिसपरसेप्शन है, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव्स, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। कोई इमोशनल है तो भी नॉर्मल लाइफ में वो विजडम को यूज करता है, कुछ काम करता है। इसी तरह कोई कितना भी इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड हो उसके भी इमोशंस होते हैं, कोई कितना भी सुपर एक्टिव हो उसके भी फैमिली लाइफ होते हैं, वो भी लॉजिक यूज करता है। दैट मीन्स एक चीज डोमिनेटिंग नेचर में होता है, बाकी चीजें सपोर्टिव नेचर में होते हैं। किसी का इमोशन अगर डोमिनेटिंग नेचर में है बाकी चीजें सपोर्ट करते, किसी की अगर रैशनैलिटी काफी डोमिनेटिंग नेचर में है बाकी चीजें सपोर्ट करते। इसी तरह कोई अगर भक्ति मार्ग में है, इसका अर्थ नहीं कि वो भक्ति मार्ग का अर्थ नहीं कि आप एक ब्लाइंड बिलीवर हो, आप में रैशनैलिटी भी एक्शन भी बाकी चीजें भी सरफेस में काम करते हैं। इसी तरह कोई ज्ञान मार्ग है, इसका अर्थ नहीं कि वो बड़ा पत्थर दिल वाला, कोई इमोशन नहीं है, नहीं, उसमें भी वो भक्ति और कर्म काम करते हैं, वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक डोमिनेटिंग नेचर में बाकी सब सप्लीमेंटिंग नेचर में होते हैं। हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था हठ योग। सबसे पहले हठ योग, हठ योग वो है जो आप मैट पर रोज करते हो या वीकली करते हो, जो आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो वो बेसिकली हठ योग है, जिसमें पांच छह चीजें हैं। पहला है षटकर्म, जो अपनी फिजिक को, माइंड नहीं, फिजिक को प्यूरिफाई क्लींस करने के लिए हम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। इसका अलग अलग नाम है, नेति धौती एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेट साफ करें, नाक साफ करें, आंख साफ करें, इसके लिए छह तरह की चीजें हैं। फिर आसन, जो बॉडी पोस्चर एक्सरसाइजेस करते हैं। प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल करने के लिए करते हैं। मुद्राएं, आपकी जो जो फिंगर्स हैं, जो पाम्स हैं, उसकी एक्सरसाइजेस हैं। बंध, जो आप सांसों के द्वारा अंदर की जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए आप काम करते हैं। इसी तरह और कुंडलिनी, नादानुसंधान, ये सब चीजें हठ योग का विषय है। जनरली बॉडी और माइंड और वाइटल एनर्जी, प्राण को ठीक रखने के लिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं बस थोड़ा रिपीट करता हूं, जो पहली बार आए हैं उनको थोड़ी हल्की सी सूचना मिले। कर्मयोग अगला आता है, कर्मयोग हठ योग के बाद। हठ योग इज डीलिंग विथ बॉडी, रिमेम्बर इट्स बॉडी। हठ योग बेसिक है, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, फिजिकली आप हेल्दी नहीं है, आप कोई भी योग कुछ भी नहीं कर सकते। आपके घुटने में दर्द हो, आंख में प्रॉब्लम हो, गर्दन में प्रॉब्लम हो, तो फिर आप ना भक्ति ना ज्ञान कुछ भी नहीं कर सकते, आपको हर जगह प्रॉब्लम है। तो पहली चीज है कि आप हठ योग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आप मैट पर जाएंगे, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, वो फिजिकली मेंटली फिट रहो, आपकी नर्व सिस्टम अच्छी तरह फंक्शन करे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो, आपकी ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़िया हो। अगर ये सब कुछ नहीं है तो यू आर टोटली अनफिट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो हठ योग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हठ योग इज नॉट द स्पिरिचुअल पाथ। हठ योग वैसे ही है जैसे आप हाई स्कूल में मैथ्स पढ़ते हो, बेसिक साइंसेस पढ़ते हो, पर हाई स्कूल में बायोलॉजी पढ़ लेने से, केमिस्ट्री पढ़ लेने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता है। पर अगर हाई स्कूल में आपने ये नहीं पढ़ा तो आगे डॉक्टरी नहीं पढ़ सकते। तो दैट द बेसिक डिफरेंसेस। आता है कर्मयोग। कर्मयोग जब आपके हर वो सिंगल एक्शन, आपका खाना पीना रहना बैठना पैसा कमाना बच्चे पालना जो कुछ भी आप करते हैं, जब वो सब कुछ स्पिरिचुअलाइज हो जाए। स्पिरिचुअलाइज कैसे होगा? जो डे टू डे कुछ जो भी हम काम करते हैं वो काम है, पर वही काम का नाम कर्म योग बन जाता है जब हम उसमें अटैचमेंट को हटा देते हैं। वही मां बाप बच्चे पालते हैं, हर मां बाप अलग अलग तरीके से जब बच्चों को हम पालते हैं तो बैकग्राउंड में जो हमारा इमोशंस होता है वो हर पेरेंट्स के अलग अलग लेवल का होता है। कोई बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बच्चों की खांसी आने पर मां बाप को बुखार आ जाता है ना? बच्चों की 90 से 89 हो गया तो बच्चे मां बाप को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे भी मां बाप होते हैं। दूसरे मतलब एफर्ट दोनों सबका बराबर होता है, पर जो इमोशनल लेवल पर जो रिएक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट. दूसरे टाइप के माँ बाप है बिल्कुल अपोजिट है, एफर्ट्स पूरा डालते हैं, कुछ भी करो हु केयर्स, भाई तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, हमारे तरफ से 100% एफर्ट से आप पूरा डिसिप्लिन रखने की कोशिश करते हैं, जो आपकी तरफ से होना चाहिए आप 100% करते हैं, कोई 1% कम नहीं करते, अंदर से यू आर क्लियर जो होगा उसका अपना होगा, मैं अपनी ड्यूटी निभाती, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे जाकर के आपके बच्चा क्या बनता है क्या नहीं बनता है, आपके इनसाइड में आप क्लियर हो, ऊपर आप क्या करते हो सेम थिंग. इन बिटवीन इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में हजारों अलग अलग टाइप के पेरेंट्स हो सकते हैं. तो ये सिंपल एग्जांपल है कि आप कुछ भी करते हैं बैकग्राउंड में क्या चलता है, अगर बैकग्राउंड में आप डिटैच्ड हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, एफर्ट्स 100% हो, पर अंदर अगर कोई अटैचमेंट नहीं, कोई अफेक्शन नहीं, तो वो एक दूसरे लेवल का कर्म होता है. और वो कर्म जब ईश्वर को सौंप करके किया जाए, रिजल्ट क्या होगा उसको केयर किए बिना, एफर्ट्स पर 100% आपकी जो काम है उसमें आप 100% लगाते हैं, ये सोचे बिना कि रिजल्ट जो होगा आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट. ये सेकेंडरी होता है कर्मयोग का सेकेंड वर्जन. थर्ड वर्जन होता है जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो कुछ भी उसका रिजल्ट मिले, जो कुछ भी एफर्ट से, वो सब ईश्वर की कृपा से, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल हूं. एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होने का, एफर्ट्स तो उतना ही है, पर उस एफर्ट्स के पीछे जो माइंडसेट है तो वो थर्ड चीज है. जब ये तीनों चीजें कंबाइंड हो जाते हैं वो कर्मयोग कहलाता है. तो कर्मयोग में आपके सारे कर्म जो कल तक सोशल या जो मैटेरियल पैन पर चलता था वो सब कुछ स्पिरिचुअल लेवल पर होने लगता है. काम यही होते हैं, सबकॉन्शियस में चलता है सब ईश्वर के लिए. बच्चे पालता हूं क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था है, मुझे पेरेंट्स ईश्वर ने बनाया, माँ या बाप बनाया, ये मेरी ड्यूटी, मैं अपने बच्चों को पालूं क्योंकि ये ईश्वर की व्यवस्था है. ये माइंड सेट जब आ जाता है तो आप बच्चे अपने पालते हो पर अंदर आपकी ईश्वर की भक्ति चलती है. आप ऑफिस में काम करते हो, अंदर ईश्वर की भक्ति चलती है, फिर वो कर्मयोग बन जाता है. देन एवरी एक्शन बिकम्स वर्शिप एंड एवरी एक्शन बिकम्स एडोरेशन. सो दैट इज कॉल्ड कर्मयोग. गीता में, वैसे तो गीता में सबसे ज्यादा कर्मयोग का डिस्कशन है, तो ये दो श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते. कर्मयोग को डिफाइन करते हैं, कृष्ण को, अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, अर्जुन परफॉर्म योर ड्यूटीज एस्टैब्लिश्ड इन योग. रिनाउंस, व्हाट इज दैट एस्टैब्लिशिंग इन योग, रिनाउंसिंग अटैचमेंट एंड इवन टेम्पर्ड इन सक्सेस एंड फेलोर. जो अभी हम सिंपल भाषा में कह रहे थे, रिजल्ट क्या होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहने का. मैंने एफर्ट्स उतना ही किया जितना कोई अटैच्ड होकर करता है 100%, पर मैं एक दो व्यक्ति के बीच में, एक में रिजल्ट अगर खराब भी होता है, एक्सपेक्टेशन से लो भी होता है या हाई होता है, दोनों सिचुएशन में मेरा स्टेट ऑफ माइंड इक्वल है. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 90% रिजल्ट मिले, 100% मिला, या 90% एक्सपेक्टेशन करने के बावजूद भी 80% मिला, वो 80 मिले या 100 मिले, दोनों परिस्थिति में मेरी जो माइंड की जो फ्लक्चुएशन है दोनों में कोई अंतर नहीं है. दूसरा है कि थोड़ा बहुत कम होने पर माइंड में भी एजिटेशन आने लगता है, इसी को कहते हैं इवन टेम्पर्ड, हर परिस्थिति में कैसा भी रिजल्ट हो बराबर रहने का, सक्सेस एंड फेलोर में. राम को आप, राम तो राजा थे, क्षत्रिय थे, उनको तो रजोगुण होना जरूरी है, रजोगुण मतलब एक्टिव लाइफ, क्योंकि आपको एवरी डे 15 17 18 घंटे काम करना है, आज ए पॉलिटिशियन, आज ए रूलर और लीडर। तो वाल्मीकि रामायण में आता है कि जो सुमंत्र उनका जो मंत्री है, जब उनको वो मैसेज देने गया इन्फॉर्मेशन कि कल सुबह आपकी राज्याभिषेक होगा, मतलब कल सुबह आप राजा बनेंगे और उसकी तैयारी चल रही है, बी रेडी फॉर दैट। और राजा रामचंद्र तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह से वो राजा बनेंगे, उनका अभिषेक होगा, कोरोनेशन होगा। और वही सुमंत्र जब वो कैकेयी और दशरथ की बहस में, दशरथ बेहोश पड़े हैं क्योंकि कैकेयी डिमांड कर रखी है कि कल सुबह ही मेरा बेटा राजा बनेगा भरत, राम जंगल में जाएगा 14 साल तक, और रॉयल तो छोड़िए, एक सिविल जो एक सिविल जो कोड होता है उसको भी नहीं फॉलो करेगा, ना सिविल ड्रेस पहनेगा, ना सिविल खाना खाए, सिविल खाना मतलब कुक्ड फूड नहीं खाएगा, सिविल ड्रेस मतलब नॉर्मल क्लॉथ नहीं पहनेगा, तो क्या करेगा, तो जंगल का खाना खाएगा बिना पकाए हुए। कपड़े क्या पहनेगा, वो जो पेड़ के जो छाल होते हैं, बार्क होते हैं, उसको पहनेगा, मतलब जंगली लाइफ। खाली जंगल में नहीं रहने का, राम सिर्फ 14 साल जंगल में रहने का शर्त नहीं था, जंगली लाइफ जीने का भी। और ये कौन जिएगा, एक राजा का बेटा, आप सोच सकते हैं, मतलब इवन आप लोग मिडिल क्लास के हो और आपको या आपके बच्चे को 14 साल तक ऐसा लाइफ जीना पड़े, चलो मां बाप का घर छोड़ देना अलग बात है, प्रॉपर्टी पर राइट छोड़ देना अलग बात है, पर आपको एक सिविल इंसान की तरह जीने का भी हक नहीं होगा, कितना बड़ा शौक है। पर सुमंत्र वो भी न्यूज देने गया कि कल सुबह जी सब चेंज हो गया, ऐसे ऐसे हालत है। तो सुमंत्र लिखते हैं कि मैंने राम के शकल में उस दिन भी देखा था जब मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि कल सुबह आप राजा बनेंगे, तो उनका एक्सप्रेशन देखा था, मुंह में जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखा था, और मैं ही वो हतवागा था जो उसको बताया कि कल सुबह आपको जंगल जाना है 14 साल के लिए, आप राजा नहीं बनेंगे, ये कंडीशन फॉलो करेंगे। तब भी मैंने राजा के, राम के फेस देखा था, दोनों समय के फेस में मैंने कभी कोई फर्क नहीं देखा, दोनों समय उनकी फेस में बराबर एक्सप्रेशन था। That is called even tempered in success and pleasure, in good and bad states. That evenness of mind is called karma yoga. कि मैं कुछ भी करूं, result कुछ भी हो mentally में, और ऐसा नहीं कि करते ही हो जाएगा, आप पूछोगे तो हमारा तो नहीं होता है, वो किसी का भी नहीं होता है, उसको पाने की जो effort है उसी का नाम है कर्म योग। okay? ध्यान रखिए, कर्मयोग को समझने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो ये है कि व्हाट आर यू डूइंग, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, दैट द ओनली एक्सटर्नल पार्ट, व्हाट द एटीट्यूड गोइंग ऑन बिहाइंड द एक्शंस, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपके एटीट्यूड से आप अच्छे या बुरे बनते हैं, आपको कोई भी काम करने के बाद जो सुख या दुख मिलता है वो इसीलिए नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं वो अच्छा या बुरा है, या रिजल्ट अच्छा मिला या बुरा मिला, आपका जो सुख और दुख है वो काम से नहीं, काम के पीछे जो एटीट्यूड है उससे रिलेटेड होता है। चेंज योर एटीट्यूड, यू विल बी हैप्पी इवन ए बैड सिचुएशन, चेंज योर एटीट्यूड, यू विल बी सैड इवन इन ए गुड सिचुएशन। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका प्रमोशन हो, आपकी पैसा बढ़े, बिजनेस में, नौकरी में, कहीं भी आपको ज्यादा कमाई हो, और हुआ भी, एक साल के बाद या जो भी, जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हुआ, पर आपने 2000 की एक्सपेक्ट किया था, 1000 सिर्फ बढ़े, आप सुखी हुए कि दुखी हुए, आप दुखी हुए, $1000 आपका बढ़ा तब भी आप दुखी मिलते हैं। दूसरा आदमी उसका $1 भी बढ़ा तब भी वो खुशी है, क्यों पता है, क्योंकि $1 बढ़ने का उसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं, जो एक्सपेक्ट $1 भी बढ़ा वो खुश है। आपके $1000 बढ़ा आप दुखी है, क्योंकि आप 1000 से ज्यादा 2000 की एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटीट्यूड है। रिजल्ट में तो आप ज्यादा फायदे में है, वो कम वो नुकसान में है, उसको सिर्फ $1 बढ़ा और आपको $1000 बढ़ा। घर में पता चला तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप मातम मना रहे हो, आप मातम मना रहे हो क्योंकि आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम था। इसीलिए रिजल्ट या एक्शंस में प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है एटीट्यूड में। वंस यू चेंज योर एटीट्यूड यू विल बी इन हेल और इन हेवन, इट डिपेंड्स यू। इसीलिए कर्म योग का बेसिकली चीज होता है वो एटीट्यूड को चेंज करना, मॉडिफाई करना, जो मैटेरियल लेवल पर है उसको स्पिरिचुअल लेवल पर आना, गोल जो सेल्फिश गोल है उसको सेल्फलेस या गॉडली गोल की तरह लाना, और एटीट्यूड में मोस्ट ऑफ टाइम पॉजिटिव रखना, तो फिर वो कर्म कर्म योग में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वही कर्म एक्शन में पूजा में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सोशियल वर्क करना, सेल्फलेस कर्म करना कर्म योग नहीं है, अच्छा कर्म है। आप दूसरों की भला करते हैं ये अच्छा कर्म है, दूसरों को नुकसान करते हैं ये बुरा कर्म है, पर अच्छा कर्म करना कर्म योग नहीं है, क्योंकि अच्छा कर्म करके भी आप दुखी मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देखा जाता है जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी दुखी उतने ही मिलते हैं, क्योंकि अंदर ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा और बुरा कर्म से कर्म योग का संबंध नहीं, कर्म योग का संबंध है कुछ भी करते हो उसके बिहाइंड आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। सो इन द इनिशियल स्टेज ऑफ कर्म योग इंडिविजुअल पूज्य से strong sense of ego and consciously or unconsciously is attached to the fruits of his efforts or at least praise or recognition. जब भी आप शुरू करेंगे तो definitely ये human nature है, अच्छा करो तो मन में रहता है कोई recognize करे, कोई तारीफ करे, और जब आपको ये इच्छा है कि कोई praise करे recognize करे, इसी का नाम है ego। ego बड़ा subtle level पर काम करता है, even कोई निंदा ना भी करे। हमने तो ऐसे भी लोग देखे, ऐसे लोग क्या हमारे में सब कुछ होते हो, सभी ऐसे ही होते होंगे, बहुत एक दो को छोड़कर, किसी ने कुछ किया अच्छा किया, उसे किसी ने उसकी बुराई नहीं की, तब भी वो आपको दुखी मिलेगा, क्यों? किसी ने तारीफ ही नहीं किया, बुराई किसी ने नहीं की तब भी वो दुखी है। तो इट्स हार्ड to get rid of that. पर अगर आप इस रास्ते, जो लोग इस रास्ते पर चलते शुरुआती दौर में मुश्किल होता है, पर जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहते हैं ग्रेजुअली आपकी डिसोसिएशन होने लगेगा, किससे? दूसरों से नहीं, खुद से, फिजिकल और मेंटल चीजों से, फिर ईगो कम होता जाएगा, तो आपका कर्म सो कॉल्ड एक्शंस विल बिकम योग। सो इन दिस स्टेज the work becomes worship to the god and it becomes spiritual, also the individual gradually becomes expert. इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। ये योग का जो एक गोल है वो तो है स्पिरिचुअल इनसाइट और ट्रैंक्विलिटी, पर इस कर्म योग का और एक साइड इफेक्ट है, एंड व्हाट इज दैट? कर्मसु कौशलम, आपकी स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। स्किल कब स्ट्रांग होता है? जब आप कंटिन्यूअसली विदाउट थिंकिंग द रिजल्ट आप एफर्ट्स करते रहते करते रहते करते रहते। गाड़ी चलाते हैं ना, शुरू शुरू में जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब पहली बार गाड़ी चलाना सीखा या चला रहे थे, आपको कितने सारे ध्यान देना पड़ता है, ये भी पकड़ना है, ब्रेक को भी पकड़ना है, लेंस भी देखना है, दिमाग खराब हो जाता है। पर जब आप रेगुलरली गाड़ी चलाते रहते हैं 5-10 साल के बाद आप तो हाथ छोड़ के भी गाड़ी चला लेते हैं। क्या है? अननोइंगली आप राइट डायरेक्शन पर हैं, अभी आपका एफर्ट नहीं हो रहा है। दैट इज कॉल्ड स्किल। इस स्किल में कैसी आपकी डेवलप हुआ? क्योंकि आपने कंटिन्यूअसली एफर्ट्स किया। एफर्ट के पीछे आपने अटास थे डिटास थे उसे फर्क नहीं पड़ता। और मजेदार बात है कि अगर आप रिजल्ट की चिंता छोड़ दें बहुत ज्यादा स्किल्ड हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपका फोकस 100% होगा। बच्चा अगर पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, अपने स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, और उस तैयारी के बीच में अगर उसके दिमाग में बार बार आ रहा है मैं 99 लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा, आएगा कि नहीं लाएगा, तो क्या पढ़ेगा? फोकस तो डाइवर्ट होता है ना। अगर वो फॉरगेट अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, वो जो चीजें हैं मैं उसको समझूं, अंडरस्टैंड करूं, जो मेमोराइज करना है करूं, तो डेफिनेटली 100% लाएगा। रिजल्ट को सोचने पर रिजल्ट में गड़बड़ी आ सकती है, पर जब आप रिजल्ट को सोचना छोड़ देते प्योरली एफर्ट पर फोकस करते हैं तो रिजल्ट बढ़िया ही होता है, स्किल होता है। दैट इज कल योग कर्मसु कौशलम। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस, यू कैन डू समथिंग एज ए डूअर और यू कैन डू समथिंग एज एन एक्टर। डूअर, मैं कर रहा हूं, मैं भला कर रहा हूं, मैं दूसरों का कल्याण कर रहा हूं, मैं ज्ञानी आदमी हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं होता तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं नहीं होता तो दुनिया का क्या होगा, मैं नहीं होता तो अमेरिका कैसे चलेगा, मैं नहीं होता तो ये क्या होगा मेरे बिना, क्योंकि मैं ही कर रहा हूं। दूसरा होता है, मैं एक एक्टर हूं, आप स्टेज पर एक्ट करते हैं, जो स्टेज पर एक्ट करता है ना, या फिल्म में या मूवी में, वो 100% देता है। देखिए, एक्टिंग का एक पहला रूल होता है, जब आप एक्ट कर रहे होते हैं तब आप, आपको ये भूलना ही पड़ेगा कि मैं सो एंड सो डूइंग दिस एक्ट। आपके अंदर ये एक्टिंग की पहली रूल होती है, जो लोग एक्टिंग सीखते हैं। क्या मान लीजिए एक एक्टर रोल करता है, मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट का रोल करता है, वो एक्टर प्रेसिडेंट नहीं है, पर द मोमेंट ही इज परफॉर्मिंग द कैरेक्टर ऑफ ए प्रेसिडेंट, उस समय उसका वो, उसका नाम क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसको वो दिमाग में नहीं होना चाहिए। ही शुड फील 100% दैट आई एम द प्रेसिडेंट। जब तक वो फील नहीं करेगा तब तक वो बढ़िया एक्टर बन ही नहीं सकता। वो एक फ्लॉलेस एक्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर वो रियलाइजेशन ना हो। यही डिफरेंट होता है जो नौसखिया एक्टर होते हैं और जो अच्छे एक्टर होते हैं। अच्छे एक्टर आपको लगता ही नहीं कि एक्ट कर रहा है, यू एंजॉय करते हो। जो नौसखिया अनट्रेंड या आधा अधूरे एक्टर होते हैं, आपको बोर लगता है क्योंकि आपको पता लगता है कि वो एक्ट कर रहा होता है। लाइफ में जब आप 100% देते हैं, पर उस देने के पीछे आप नहीं होते हैं, आप प्रेसिडेंट का 100% रोल निभाते हैं, पर अंदर आप सचमुच प्रेसिडेंट की फीलिंग नहीं, आप नहीं होते हैं। इसी तरह जब आप 100% देते हो, पर अंदर से आप दुनिया से अपने ईगो को नहीं लाते हो। कोई एक्टर प्रेसिडेंट की रोल करने के बाद जो मेकअप रूम में जाता है तो या अपने पीछे जाता है, वो नॉर्मल इंसान होता है। तो आप फैमिली मैन हो, बच्चे पालते हो, ऑफिस में किसी पोस्ट पर हो, दूसरों की भला करते हो, करो 100% एज एन एक्टर। पर जब आप इन सब से अलग हो जाओ, इंडिविजुअली रहो, आपसा उनसे कोई मतलब नहीं है, भूलना, ये है कर्मयोग। तो जब आप पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देते हैं ईश्वर को, आपका सब काम ईश्वर का प्रसाद बनता है, तो आप कर्मयोग बन जाते हैं। ये है कर्मयोग की सिंपल डेफिनेशन। आपकी जो, आपके अंदर जो काम करने का कीड़ा है, वो कीड़े को जब आप स्पिरिचुअलाइज कर लेते हैं तो आप योगी बन जाते हैं। अगला है भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति का कनेक्शन है भक्ति प्यार से, प्रेम। प्रेम एक इमोशन है, लव है। तो जब वो जो लव जब आप दूसरों से करते हो, अपने स्पाउस से, बच्चों से, घर से, गाड़ी से, देश से, कल्चर से, कपड़े से, खाना से, पीना से, मैथ गेम से, स्पोर्ट्स से, किसी से भी प्यार कर, मूवी से, वही प्यार को जब आप मोड़ के ईश्वर में लगा दो तो ईश्वर भक्ति है। तो लविंग डिवोशन भक्ति का, प्यार की जो जब आप नॉर्मली प्यार करते हैं किसी से भी जेन्युइन प्यार, मैं वो सोशल प्यार की नहीं बनू जो जबरदस्ती, मतलब किसी से शादी हो गई, बच्चे हो गए, फ्रेंडशिप हो गया तो ऊपर दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो तो सुपरफिशियल है। जेन्युइन प्यार मतलब कैसे पता चलेगा आप किसी से जेन्युइन प्यार करते हो? हर आदमी एक्सपीरियंस्ड है, बताने की जरूरत नहीं है, पर तब भी आपको कब पता लगता है आप किसी से प्यार करते हो? जब उसकी खुशी से आप खुश होते हो, आप बीमार भी हो पर जिसे आप प्यार करते हो अगर खुश है तब भी आप खुश होते हो, है ना? तब उसी को कहते हैं हम प्यार है। और उसको कोई चोट लगे, प्रॉब्लम हो, आप दुखी हो जाते हो, आप फिजिकली फिट हो, हेल्दी हो, पर आपका बच्चा बीमार पड़े तो दुखी हो जाते हो, आपकी पति या पत्नी बीमार पड़े तो आप दुखी हो जाते हो, आपकी गाड़ी जिसे आप प्यार करते हो, जिस कार से, उसमें कोई चोट लग जाए तो आप दुखी हो जाते हो, आपके घर जिसे आप प्यार करते हो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप दुखी हो जाते हो, आपकी कोई फेवरेट टेबल हो, चेयर हो, जिसको आपको बस बहुत लगाव है, उसमें कुछ चोट आ जाए तो आप दुखी हो। तो जहां भी प्यार आप करते हो तो आप उसकी खुशी में खुशी होते हो, उसके दुख में दुख होते हो। ये मुंडन लव है, जो नॉर्मल जिसको आप लव कहते हैं। भक्ति के लिए पुस्तक है, 15th century में लिखा गया नारद भक्ति सूत्र, जो भक्ति को डिफाइन करता है। उसका पहला लाइन है सातु परम प्रेम रूपा, मतलब भक्ति क्या है? जो सुप्रीम लव है वो प्यार है, जो वो भक्ति है। सुप्रीम लव क्या है? जो सुपरफिशियल लव होता है, जैसे अभी हवन के समय भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक्सपेक्टेशन रहता है, किसी ना किसी कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहता है कि इसके बदले क्या मिलेगा। कुछ नहीं तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये तो एक्सपेक्टेड है कि तुम मुझसे प्यार करो, नहीं तो फिर हम लड़ते हैं। कुछ भी नहीं हो तो इसीलिए लड़ते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। लड़ना किस बात की? क्योंकि मैं करता हूं ना, उसके बदले में तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं भी करते हो तुम भी करो। सुप्रीम लव क्या है? जहां आदमी अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो प्यार आप स्पाउस से करते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से करते हो, अपनी गाड़ी से, घोड़े से, घर से, पैसे से, नाम से, फेम से करते हो, देश से करते हो, कल्चर से करते हो, रिलीजन से करते हो। बहुत लोग देखिए रिलीजन के लिए जान देते, देश के लिए जान देते, मतलब एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं ना। अब रिलीजन वाले तो एक्सपेक्टेशन रख के ही करते हैं, क्योंकि मरने के बाद उनको स्वर्ग मिलेगा और वो बहुत कुछ मिलने वाला ऊपर, वो इसीलिए मरते मारते रहते हैं। सो रिलीजन तो छोड़ दीजिए, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हैं? पर आप देखिए जो लोग आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने जान दी, क्या एक्सपेक्टेशन था खुद के लिए? भगत सिंह है, उधम सिंह है, कुछ नहीं, बस देश आजाद हो। वो क्या था? वो लव था, प्यार था अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। और कैसा लव? सुप्रीम लव, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, उल्टा खुद को कुर्बान करने में मजा आता था। बंदे चलो मरना तो आसान है जी, देवियों सज्जनों मरना आसान चीज है, जीते जी टर्चर हो, टर्चर्ड होना बहुत मुश्किल है। और करोड़ों लोग पिटाई खाते थे, चाबुक से मार खाते थे, जेल में जाते थे, सताए जाते थे, और जैसे ही सताए जाते थे वंदे मातरम बोलते थे और मार खाते थे। और अगर आप हिस्ट्री पढ़े जिनके ऊपर जुल्म हुआ है आपके रोए खड़े हो जाएंगे ऐसे। ये सिर्फ गांधी, नेहरू या सरदार पटेल, ये 10 20 50 नेताओं से सिर्फ आजादी नहीं आई। आजादी तो ले लेवल से लेकर के मजदूर किसान से लेकर हजारों लाखों लोगों को सफरिंग करना पड़ा। मजेदार बात है, बड़े बड़े लीडरों को वो सफरिंग नहीं करना पड़ा, फिजिकल सफरिंग जो ले मैन को करना पड़ा। तब भी जय हिंद वंदे मातरम बोल के उस किसलिए क्या मिलना था उनको? बस वो एक अफेक्शन है, एक लव है, जहां अपने आप को कुर्बान कर देने में ही मजा आता था। ये प्यार की सुप्रीम लव की सरेंडरिंग। जब आप खुद को कहीं भी सरेंडर कर देते हैं, वो प्यार फिर प्यार नहीं कहलाता है, उसको हम भक्ति कहते हैं। इसीलिए देश से प्यार करने को क्या कहते हैं? देशभक्ति। मां बाप से प्यार करो तो पितृभक्ति, ईश्वर से प्यार करो तो ईश्वर भक्ति, पैसे से प्यार करो तो धन भक्ति, बच्चों से प्यार करो तो पुत्र भक्ति। अब कहेंगे जी अब भक्ति तो हम थोड़ा ऊपर लेवल पर रखे ना, मानते नहीं कि संतान भक्ति है। भक्ति जहां भी आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो वो प्रेम भक्ति में कन्वर्ट हो गया। पर भक्ति आफ्टर ऑल एक इमोशन है, फीलिंग है। इफ यू मेक यूज ऑफ योर फीलिंग और योर लव पोटेंशियल, योर एबिलिटी टू लव, टू एक्सरसाइज दोज अफेक्शन, डिवोशन, सेंटिमेंटल इमोशनल एस्पेक्ट, एंड दिस पोटेंशियल एज योर मीडियम, देन इट बिकम्स व्हाट इज नोन एज द पाथ ऑफ डिवोशन। जब आप उस इमोशन को, फीलिंग को, वो सुप्रीम लव को अपने लाइफ में चेंज लाने के लिए करते हो, वो स्पिरिचुअल इंसाइट लाने के लिए करते हो, ट्रैंक्विलिटी लाने के लिए करते हो, वो भक्ति बन जाती है। यही है भक्ति मार्ग। और जब आप किसी के लिए सरेंडर कर लेते हो, क्योंकि हम स्पिरिचुअल भक्ति की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम यही फोकस करेंगे। तो जब आप ईश्वर के सामने अपने आप को मेंटली फिजिकली आप वो, तो हम तो देखते हैं मंदिर में रोज लोग कभी कभी 5 बार भी जाकर पूरे बॉडी को लेटा करके माथा पीटते रहते हैं, भगवान भगवान करते हैं, बाहर आकर के सारे पाप करते रहते हैं। हम उन भक्तियों की बात नहीं करते हैं जो आप फिजिकली करते हो, 24 माला जपते रहते हैं पर अंदर तो सारी गंदगी भरी पड़ी होती है। कोई भी मार्ग अपनाए, बेसिक चीजें तो है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, सेंसेस। अब माइंड की ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है? मन की रूपांतर हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, अच्छा हो। शुद्ध होने का मतलब क्या है? बुराइयां खत्म हो जाए, लोभ क्रोध गुस्सा वगैरह वगैरह जो भी ईर्षा द्वेष ये सब खत्म हो जाए। अगर ये सब नहीं हुआ तो सब फ्रूटलेस थिंग्स है, यूजलेस है। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा अंदर हेल्प नहीं करता है। अगर कोई, हमेशा ध्यान रखिए, हम सब स्मार्ट लोग हैं, कोई भी आप काम करते हैं थोड़ी दिन करने के बाद लगा कि इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, आप चेंज कर देते हैं। पर क्या है कि रिलीजियस स्पिरिचुअल चीज में लोग इतने ब्लाइंड होते हैं, और डेफिनेटली भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा सुपरस्टिशन दिखता है, क्योंकि फीलिंग और इमोशन का खेल है, बहुत लोग उसको कैश भी करते हैं। वो हम गलत रास्ते पर भी हैं, कुछ मिलता जुलता नहीं तो भी लोग कहते हैं करते रहो करते रहो। फिर हम क्या करते हैं? बेईमानी भी खूब करते हैं, पूजा भी बहुत करते हैं, सोचते हैं सब ठीक हो रहा है, कुछ नहीं ठीक हो रहा है जी, अंदर तो और खराब होता जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। भक्ति करो, कर्म करो, ज्ञान करो, मेडिटेशन करो। अगर माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मन अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे अंदर की पर्सनालिटी में कोई रूपांतर चेंज नहीं आ रहा है, तो यू आर इन ए रॉन्ग ट्रैक। हो सकता है मेडिटेशन करके आधा घंटा मन को शांत कर देते हो, वो आपको मेडिकल बेनिफिट दे सकता है, थोड़ी देर के लिए आप कूल एंड काम हो सकते हो, पर वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फायदा नहीं करेगा। जब तक आपकी कैरेक्टर में कुछ चेंज ना दिखे, जब तक आपकी माइंड में कोई शुद्धता ना आने लगे। तो भक्ति योग की बात करते हैं। सो इन भक्ति योग में जब इमोशंस चैनलाइज हो जाते हैं एक ऊपर लेवल पर, जिसको हम कहते हैं डिवाइन लेवल पर, जहां ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से ऊपर उठ जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप रोज बैठ के हरे कृष्ण या ओम ओम करते रहे, ये तो नेचुरली होना चाहिए। फोर्सफुली जबरदस्ती माला 108 208 जपने से कोई फायदा नहीं। भगवान कोई थोड़े बैठ के काउंट करता है, अच्छा मुझे 100,000 बरा मेरा नाम लिया, चलो इसको भेज दो स्वर्ग, इसने तो 50,000 लिया, चलो इसको नर्क भेजो। इतना घटिया भगवान थोड़े ही होगा, नहीं होता है ना। आपको लगता है कोई समझदार इंसान भी ऐसा करेगा? पर हम सोचते हैं भगवान ऐसा करता है। अपनी स्टुपिडिटी को भगवान पर थोपते रहते हैं। अगर सचमुच ऐसा भगवान है तो ऐसा भगवान ना होने से बेटर है ना। फिर तो खतरनाक है ना, फिर अच्छे आदमियों को सब नर्क भेजेगा क्योंकि उनकी काउंटिंग में कम हो गई। 108 की जगह 107 बार गायत्री जपा, नर्क भेजो। सोचो, कभी कभी अपना दिमाग भी लगाओ, लोगों को भी बोलो जो ऐसा करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प करता है डेफिनेटली, पर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और माइंड के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन हो, ठीक है, तो जब आपकी इमोशंस उस डिवाइन प्लेन पर चला जाए, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करते हुए भी मेंटली आप डिवाइन प्लेन पर हो और आपकी फीलिंग्स, वो जो इमोशंस हैं, वो सब ईश्वर के लिए हो जाए, अपने आप को पूरी सरेंडर कर ले, आपकी हर काम के पीछे जो आपका ऑब्जेक्ट हो और कुछ नहीं, ईश्वर हो जाए, दैट इज भक्ति। करने में सुनने में आसान लगता होगा, और लोग बोलते भी है कि भक्ति मार्ग सबसे आसान है। रिमेंबर, सबसे मुश्किल काम भक्ति है, क्योंकि अपने आप को पूरा नाम जपना तो आसान है, पूजा पाठ करके पंडित जी को दक्षिणा देना तो आसान है, पर अपने आप को 100% सरेंडर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसी को कहते हैं भक्ति मार्ग। अगली बार हम जानेंगे ज्ञान योग और राजयोग। राजयोग क्यों? क्योंकि योग जो सबसे बड़ा योग है, जो इन सबको कॉम्बिनेशन करके बनता है। पहले हम समझेंगे ज्ञान योग क्या है। तो आज हमने, कल और आज हमने समझा हठ योग, कर्म योग और भक्ति योग, फिर हम ज्ञान योग और राज योग के साथ कंक्लूड करेंगे।